ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பூர்ண ஹோனே தேக மே ரே புருஷா உஸ்கோ ஜானே, ஜிஸ் பிரகார் தும்கோ மிருத்யு கஷ்ட நீ தே. நீ ஜானோகே தோ மிருத்யு நிமித்த கஷ்ட அவசிய ஹோகா, दुख को प्राप्त करोगे. इसलिए ऐसा नहीं हो, उसको ज्ञान, उसका ज्ञान प्राप्त करो. ऐसे आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं. ऐसे महर्षि पिपलाद ने 6 शिष्यों को उपदेश करके एक एक ने प्रश्न किया. उपदेश सुनते समय सब थे, ये ना कि एक ही प्रश्न पूछ करके चला गया, ऐसा नहीं. इस सब को उपदेश करके, सब उपदेश करने के बाद पिपलाद महर्षि कहते हैं, तान हुवाचीता वदेवाहमेतत् परम ब्रह्म वेद नाथ परमस्तीति. तान शिष्यान उवाच, महर्षि पिपलाद ने कहा, एतावद एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद, यह जो परम ब्रह्म उसको तो मैं इतने ही जानता हूं. एतावद इतने ही जानता हूं. षोडश कला का अधिष्ठान, जिसके अज्ञान से मृत्यु मरण जन्म जन्म मरण आदि संसार दुख, जिसके ज्ञान से मुख्य है वही षोडश कल पुरुष अंदर स्थित अपना स्वरूप है, उसको जानना चाहिए. उसको नहीं जानने से जन्म मरण आदि संसार ज्ञान से मुख्य है. ए तत् परम ब्रह्म, इतने ही मैं जानता हूं. इतने में जानता हूं कहेंगे तो शिष्यों की शंका होगी, और कुछ बाकी है जानने के लिए? फिर कहीं दूसरे स्थान में जाएंगे, इनको मालूम नहीं. इसलिए कह देते नाथ परमस्थिति, इससे बढ़कर और अधिक उसे है ही नहीं. इतने में जानता हूं, और कुछ नहीं जाना जा सकता है. ताकि अपना स्वरूप रहता परम नास्ति, इसके आगे कुछ है ही नहीं. इसलिए उपदेश करते हैं शिष्य अपने को कृतार्थ माने, कृतार्थ हो जाए. इतने ही मैं जानता हूं कहेंगे तो फिर उनका संशय होगा, कहीं और कुछ बाकी रह गया. इसे कहते नाथ परम अस्ति, आगे कुछ है ही नहीं, इतने ही पर्याप्त है. ऐसे कहकर उपदेश कर दिया. उपदेश करके जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऋषि अपर ब्रह्मनिष्ठ थे, पर ब्रह्म अन्वेषण करते हुए गए महर्षि पिपलादि के पास. एक वर्ष सेवा करके रहे, एक वर्ष के बाद उपदेश श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त करने से कृतार्थ हो गए. कृतार्थ होने पर शिष्य क्या देगा? देने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है. अंत में कहते, ते तम अर्चयंत तम ही न पिता, यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारेसी, नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य. ते शिष्या गुरु के द्वारा उपदिष्ट होने पर कृतार्थ हो गए. कृतार्थ होने पर अनऋणी होने के लिए, ऋण मोचन मुक्त होने के लिए, विद्या निष्क्रय के लिए, कुछ नहीं देखा क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? ते तम अर्चयंत, जनक ने याज्ञवल्क्य से उपदेश सुनने के बाद का सारा राज्य में दे रहा हूं, माम चापि सह दास्याय, मैं अपने को भी देता हूं तू दास्य, दास नौकर रूप से रखने के लिए, सेवा कराने के लिए. ये तम अर्चयंत, उनकी पूजा करने में पुष्पांजलि दे करके प्रणिपात करके कहते, त्वम ही न पिता, आप हमारे पिता है और कुछ नहीं. त्वम न पिता, पिता कैसे हुए? यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारेसी, अविद्या से परम पार पार कराते है. पिता कहते है, जनकश्च उपनेता च यश्च विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरस्मृता. पितरस्मृता पांच, जनकश्च, जनक है जो जनक, पिता माता जनक है, जन्म देने वाले प्रथम है पिता हो. दूसरा उपनेता, उपनयन यज्ञ पित संस्कार, उपनयन संस्कार कराने वाले भी पिता है. यश्च विद्याम प्रयच्छति, विद्यादाता भी पिता है समान, ये विद्या प्रदान करने वाला आचार्य है. और अन्नदाता भी पिता के समान है, अन्नदान करते, इसलिए अन्नदाता. भयत्राता, भय से रक्षा करने वाले, मां भय से रीतिवादी, कोई आया भय से रक्षा करना, अभय प्रदान करना, सबसे बड़ा दान अभय दान. कोई आए तो मां भय कर, मत भय नहीं करो, कोई परवाह नहीं, भय नहीं करो, हम रक्षा करेंगे. तो भयत्राता, ये पंच पितर कह गए. ये कहा गया अन्य जो पिता है शरीर जन्म देने वाले, शरीर मात्र जनक तो पूज्यतम है, और आप जो ब्रह्म शरीर का जनक हुए, मतलब पर ब्रह्म का ज्ञान करा दिए, आप सबसे बड़े श्रेष्ठ पिता है, इसमें क्या कहना है, कह करके पूजा करके कह दे आप ही हमारे पिता है, जो अविद्या के परम्पार को मोक्ष को प्राप्त करा लेते हैं। अंत में नमः परम ऋषिभ्य, परम ऋषि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति ऐसे परंपरा से आचार्य को उनके आचार्य से, उनके आचार्य को उनके आचार्य से, उनको उनसे नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्व, ब्रह्मा शक्ति वशिष्ठ शक्ति व्यास ऐसी परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये परंपरा ब्रह्म परम ऋषि है, गुरु परंपरा, उनको नमस्कार दो बार कहते परम ऋषि भ्य नमः परम ऋषि भ्य दो बार। ये समाप्ति, षष्ठ प्रश्न समाप्त हो गया, यह प्रश्न उपनिषद समाप्त हुआ, इसका शांति मंत्र है। ओम भद्रं कर्णे वि श्रृणुयाम देवा भद्रं पशेमा क्षवीर्यजत्रा स्थिरैरंगे सुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। यह प्रश्न उपनिषद समाप्त होने के बाद मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद के है। मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में है और प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग में है। ऐसे माना जाता है प्रश्न उपनिषद मुंडक उपनिषद की व्याख्या के समान है। मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम, मंत्र ब्राह्मण मिलकर के वेद है। जो प्रश्न उपनिषद में कहा गया वही मुंडक उपनिषद, वही आत्म तत्व का उपदेश किया जाएगा। तो मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में है, ये भी अथर्ववेद में है, उसी का ही शांति मंत्र वही है। तो ये नियम है, जिस उपनिषद का प्रारंभ किया जाता है उसका शांति पाठ किया जाता है। ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा क्षवीर्यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अनिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। इसमें मुंडक उपनिषद में पहले गुरु परंपरा से विद्या की प्राप्ति हुई थी, वो पहले परंपरा का कथन करते हैं उपनिषद मूल में। परंपरा इसलिए कहते हैं, इसे बड़े बड़े महापुरुष इसी परंपरा से विद्या की प्राप्ति हुई। परम पुरुषार्थ मुख्य साधन है, बहुत प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं करके विद्या की स्तुति होती है। जो विद्या का उपदेश किया जाएगा, इतने महत प्रयोजन वाला बड़े बड़े महापुरुष ने कितने बड़े समर्थ होकर के गुरुकुल वास करके सेवा करके कैसे प्राप्त करते थे। तो बुद्धि में विषय के प्रति रुचि होने पर आगे सादर आदरपूर्वक प्रवृत्त हो, इसे पहले परंपरा कह करके आगे इसमें कहेंगे किस प्रकार वैराग्य साधन है, किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। ये सब क्रम से जो प्रश्नोपनिषद में कहा गया अर्थ तो ही ब्रह्म विद्या ही है। तो ब्रह्म विद्या में किस प्रकार श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रभुत्व होना चाहिए जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, ये परंपरा के अनुसार कैसे दिखाने के लिए प्रारंभ किया जाती है, प्रारंभ करते हैं। जिसमें पहले परंपरा का कथन। ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ओम करके वेद मंत्र प्रारंभ करते ब्रह्मा है देवानाम प्रथम संभव हो, देवानाम अधे प्रथम प्रधान प्रधान, ये हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म कहे जाते हैं। देवानाम अधे प्रथम प्रधान, समस्त देवता भी कही जाती है। हिरण्यगर्भ है समस्त सूक्ष्म सर अभिमानी, व्यष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम तेजस, व्यष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी का नाम हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ है देव ब्रह्मा प्रथम हुए, जो कि विश्व से कर्ता, पहले भगवान हिरण्यगर्भ की सृष्टि करने पर सारे जगत की सृष्टि करते हैं, उनको प्रजापति भी कहीं कहते हैं। विश्व से कर्ता जगत का उत्पादन करने वाले कर्ता है, और भुवन से गुप्ता विशेष ब्रह्मा का विशेषण भुवन की रक्षा भी करते हैं। सब ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा जी ने पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, ब्रह्म विद्याम प्राह, जो ब्रह्म विद्या का विशेषण सर्व विद्या प्रतिष्ठान, सारे विद्या की प्रतिष्ठा है, अन्य जितने विद्या है सारे विद्या की अभिव्यक्ति प्राप्ति इससे होती है। सर्व विद्या का विद्य जितने है, सारे विद्या का ज्ञान का विषय जितने है, सब का ज्ञान हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर और कोई पदार्थ अज्ञात नहीं रहता है जिसको जानने की इच्छा हो। इसे सारे विद्या का विषय जितने अन्य विद्या है सब का विषय इस ब्रह्म विद्या होने के बाद सब ज्ञात हो जाते हैं, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है, अज्ञात कुछ नहीं रहता है, कुछ जानने की बाकी नहीं रहता है। इसे सारे विद्या की प्रतिष्ठा है, सारे विद्या का विषय जिससे जाने जाते हैं वो ब्रह्म विद्या। अथर्व आय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अथर्व नाम को उनके ज्येष्ठ पुत्र को कहा। सृष्टि बहुत अनेक बार अनेक करोड़ करोड़ ब्रह्मा बनी है, कितनी सृष्टि है, किसी सृष्टि में ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र नाम था अथर्व। सर्वदा ब्रह्मा जी के पुत्र नाम अथर्व नहीं, कहीं वशिष्ठ आया कहीं अलग आया, तो किसी सृष्टि में उनका ज्येष्ठ पुत्र अथर्व था, उसको उपदेश किया। पहले ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुआ। अब अथर्व को ज्ञान होने के बाद आगे परंपरा है, अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिर से परावराम। अथर्वण शब्द अथर्वण, अथर्वणे याम प्रवदेत, अथर्व को जो कहा था ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा अथर्व को कहा था, ब्रह्मा जी के शिष्य हो गए उनका ज्येष्ठ पुत्र अथर्व। अथर्वा ताम पुरा उवाच अंगिरे, अंगिर अंगिरे चतुर्थ्यंत अंगिर को, अथर्व नाम का ब्रह्मा जी का जो ज्येष्ठ पुत्र अभी वाचार्य बन करके वो अंगिर को उपदेश किया, अंगिर नाम को उनके शिष्य हुए। ब्रह्म विद्याम ताम ब्रह्म विद्याम, जिस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई थी जी ब्रह्मा जी से, उसी ब्रह्म विद्या को अथर्वा ने अंगिर नाम को उनके पुत्र को अथवा शिष्य को उपदेश किया। स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह, स हो गया अंगिर, अंगिर भी अपने शिष्य अथवा पुत्र भारद्वाज नाम ही, भारद्वाज भरद्वाज गोत्र में होने से भारद्वाज हुआ। सत्यवाहाय सत्यवाह उनका नाम है, सत्यवाहाय प्राह उपदेश किया। और भारद्वाज फिर उनका शिष्य भी आचार्य बन करके अंगिरसे, अंगिर अंगिरस शब्द है, पहले अंगिर था आई अंगिरस चतुर्थ अंगिरसे, अंगिरस का प्रथमांत बने अंगिरा, अंगिरा नाम क्रतु पुल पुलस्ते अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि सप्तर्षि में अंगिरा आते हैं, अंगिरस का बनता अंगिरा। तो भारद्वाज अंगिरा को उपदेश किया परावरा, परावरा है सर्व विद्या विषय की व्याप्ति, परावराम परस्मात परस्मात अवर्ण प्राप्त, पर आचार्य से निकृष्ट शिष्य को प्राप्त होने से उसको परावरा कहते, परावरा परस्मात परस्मात अवर्ण प्राप्त परावरा, पर आचार्य से निकृष्ट उनके शिष्य को प्राप्त होने से परावरा कहते, और सारे विषयों को व्याप्त करने से भी परावरा। ये पर विद्या का विषय अपर विद्या का विषय जितने ब्रह्मांड में है सब को व्याप्त करने वाली पराविद्या ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने पर आगे जितने विद्या का विषय सब ज्ञात हो जाते हैं, अज्ञात तो कुछ नहीं रहता है। किस प्रकार ज्ञात हो जाते हैं आगे बताएंगे। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर और ज्ञेय कुछ अज्ञात नहीं रहा, कुछ जानने की इच्छा नहीं है, कुछ कर्तव्य भी नहीं शेष रहता है कुछ करने के लिए, तभी कृतकृत्य होता है, नहीं तो कृतकृत्य नहीं हो सकता है। बहुत जानने पर और कुछ जानने के बाकी रह गया तो कृतकृत्य नहीं है, कृतकृत्य हो जाता है ब्रह्म विद्या। तो अंगिरस को उपदेश किया। अभी अंगिरस के पास एक आए शौनक नाम को शौनको हवे महाशालवंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रछ कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। शौनक है, शौनक के पुत्र है शौनक, महाशालो महाशाल है गृहस्थ है, महागृहस्थ मतलब गृहस्थ है और सन्मार्गगामी गृहस्थ थे महाशाल। गृहस्थ शौनक के पास गए, गृहस्थ का भी कर्तव्य है ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है, ये नहीं ब्रह्म विद्या के लिए केवल सन्यासी है ऐसा नहीं। गृहस्थ मतलब खाली घर मकान बनाकर धन कमाना नहीं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है, इसलिए कहीं गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कह दिया। इसलिए श्रेष्ठ का पूज्य तो सन्यासी होते हैं, श्रेष्ठ इसलिए सन्यासी का कर्म भी करते हुए वही ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, गृहस्थ ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करेंगे और अपने धन कमाएंगे, कर्म करेंगे, दान करेंगे, सारे आश्रम को पोषण करते हैं। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास तीन आश्रमों को भरने पोषण करने वाले गृहस्थ ही करते हैं, उनके ऊपर भार बहुत ही बहुत करते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म जो पालन करते सम्यक रूप से पालन करते हैं तो ईश्वर की पूजा हो जाती है, अंतकरण की शुद्धि होती है, तप हो जाता है, ये तप करने पर उनको ज्ञान प्राप्त भी होता है और इसलिए तप करना चाहिए और तप का फल ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। खाली गृहस्थ धर्म पालन करते करके संतोष नहीं, पालन करते तो अंतकोण शुद्ध होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अंतकोण शुद्धि का ही परिचय है। अंतकोण शुद्ध होता है तो अपने कर्तव्य करेंगे तो अंतकोण शुद्ध होगा, जो शास्त्र भी तो कहा गया करेंगे तो शुद्ध होगा, पूजा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, कृपा होने पर अंतकोण शुद्ध होने पर वैराग्य होता है, जिज्ञासा होती है और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है, यही प्रमाण। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजे भी छोड़ करके जंगल जाते हैं, अभी भी महा ऐसे है जिज्ञासा करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अंतिम तक साधु में तो बीमारी पकड़ लेती है, थोड़ा कुछ पढ़ा सुना जाना नहीं जाना, प्रवचन का कथा करना, गुरु बन जाना, सिद्ध बन जाना, ये तो शीघ्र शुरू कर लेते हैं। साधन वजन कम कर पाते हैं किंतु आगे उपदेश करने में लग जाते हैं, फिर जब इधर लगे सम्मान धन आदि प्राप्त होने पर आगे साधन वजन नहीं हो पाता है। इसे बहुत प्रवचन करने वाले अपने लक्ष्य को छोड़ करके इधर, किंतु गृहस्थ में देखा जाता है कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं वो भी सिद्ध बन करके उपदेश करना शुरू कर देते हैं। कोई ज्ञान प्राप्त करके उपदेश करना तो निषेध नहीं, किंतु घोष के बिना पहले से ही थोड़ा कुछ पढ़ करके कथा करके उपदेश शुरू कर लिया और उपदेश करते करते हम भजन करते भक्ति करते हैं, भागवत कर कथा करके भक्ति करते तो भक्ति होकर के परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उपदेश उसे सम्मान धन आदि प्राप्त होने पर लक्ष्य से हट जाते हैं, बड़ा कठिन है। आगे उपदेश प्रवचन करके भजन करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, बड़ा कठिन है। कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं नहीं तो अधिक गृहस्थ तो अंतिम तक रहते कि हमको ऐसे ज्ञान प्राप्त हो, परमात्मा दर्शन कैसे होगा, इसलिए ऐसे प्रयत्न करने वाले भी होते हैं, करना ही चाहिए। तो इसलिए कहा गया पहले भी गृहस्थ ज्ञानी होते थे, यहां भी कहते हैं महाशाला नाम लेते शौनक अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रछ, और आचार्य गुरु के पास जाने के लिए विधि शास्त्रीय विधि के अनुसार ये विधिवत उपसन्न उनके पास जाकर के पूछा। इसके पहले विधिवत उपसत्ति नहीं कही गई, यहां से शुरू हुआ, इसलिए इसे पहले क्यों कहा गया क्यों नहीं गया तो इसमें कहते हैं उपसन्न जो उपसन्न विधि है आचार्य के पास शिष्यत्व ने जाना है, पहले नियम नहीं था और मर्यादा करते हैं, अथवा दो प्रकार पहले नियम नहीं था यहां से शुरू, आगे भी हम लोग को इस मार्ग में चलना है, विधिवत समित पाणी उपहार लेकर जाना चाहिए। और दूसरा है एक मध्य देहली दीपक न्याय कहते हैं, घर के दरवाजे में दीपक रख दिया तो घर को भी प्रकाश करे बाहर को भी प्रकाश करे, तो यहां कह देने से पहले भी विधिवत उपस्थिति मान लेना है, नहीं कहने पर भी यहां भी पहले भी उपसन्न वैद्य यहां विचार हुआ भाषा में तो उपसन्न विधिवत जाना उपशक्ति गुरु के पास जागना नम्रता से, यहां पहले तो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर लिया, अपने पुत्र को उपदेश कर लिया, इसी तरह आया, ये नहीं आया कि शिष्य बन करके उनके पास जाकर के पूछा, ऐसा नहीं है। यहां कहा गया तो इसी प्रकार समझ लेना, पहले भी शिष्य बन करके पुत्र होने पर भी पिता के पास जैसे सुगुरु जी व्यास जी को व्यास जी से उपदेश ग्रहण किया था, त्रिव्यास जी उनको जनक के पास भेजा, जैसे अभी अलग अलग प्रकार का सब आख्यायिका है, तो वो भी पहले भी उपसंदन विधि उपसत्ति जब कहेंगे समीप में जाना शिष्यत्व नम्रता के साथ उपहार लेकर के समित पानी आता है, तो देहली दीपक न्याय से दोनों के लिए संबंध करने के लिए उपसदन विधि गुरु के पास जाने के लिए विधि का विशेषण दिया। तो देहली दीपक न्याय से आगे भी ऐसा पहले भी ऐसा था, जाकर के प्रश्न किया, विधिवत जाने के बाद फिर प्रश्न करना पड़ता है, सेवा करना करनी चाहिए, से प्रश्न किया कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति, ये प्रश्न क्या है भगवः कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम्, क्या ऐसे कोई पदार्थ है जिसके ज्ञान उनसे सबका ज्ञान हो जाएगा, यदि उसको हम बताएं ऐसे एक पदार्थ है जिसके ज्ञान उनसे सबका ज्ञान हो जाए, एक पदार्थ यही है मूल मंत्र हुआ, ये एक ज्ञान से सबका ज्ञान, यहां से प्रश्न हुआ उपदेश किया जाएगा, एक ज्ञान से सबका ज्ञान होगा कस्मिन् विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम्, ये तभी बनेगा एक कारण से सारे कार्य की उत्पत्ति हो, उपादान कारण के ज्ञान से कार्य के ज्ञान होता है, सोना को जान लिया तो सोना से बने गए भूषण जितने नाम रूप अलग अलग होगा सबको जान लिया है सोना है, भूषण बनाते हैं बहुत विचित्र बनाते हैं, सब भाषा में अलग अलग नाम कहेंगे, सोनार बनाने वाले अलग नया नया आकार बना देते हैं, नाम रूप अलग बनाने कोई आपत्ति नहीं, बनाने वाले कभी कुछ बना देता है, नाम भी कुछ रखता है, सब भाषा में अलग अलग नाम कहेंगे, किंतु आपको नाम रूप ज्ञान नहीं होने पर भी जो सोना को जान लिया अर्थात सोनारे के पास लो, मूर्ख कुछ नहीं जानता है वो सोना को लेकर भूषण बनाने जानता है, आप अपने भाषा से कुछ कहते किस भाषा में क्या कहते उसे कोई मतलब नहीं, उसको पिघाल कर देखता है कसौटी में ये क्या सोना कितने है, तो सोना को जान लिया तो नाम रूप में उसका कोई आग्रह नहीं, आप बोलो किस नाम से कहो क्या रूप बनाओ उसके सामने क्या दिखता है सोना ही, नाम रूप कुछ नहीं सोना ही दिखता है, सोना कैसे सोना, तो नाम रूप मिथ्या है, उपादान कारण ज्ञान से कार्य के ज्ञान होता है, एक ही कारण उपादान कारण हो उससे भिन्न कुछ नहीं रहे, कार्य उपादान कारण से भिन्न नहीं होता है, भिन्न इसलिए नहीं क्योंकि उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहेगा, ये पट्ट के बिना माला रहती है क्योंकि ये पट्ट इसका उपादान कारण नहीं, पट्ट के उपादान कारण तंतु है, तंतु को निकालेंगे तो पट्ट नहीं रहेगा, उपादान कारण के बिना कार्य नहीं रहता है, कार्य के बिना तो उपादान कारण रहेगा, ये पट में तंतु को निकाल कर तंतु इकट्ठी कर रह सकते हैं, पट नहीं रहेगा तो तंतु रह सकता है, तंतु कारण तो रह जाएगा किन्तु तंतु के बिना पट नहीं रहता है, तो कार्य कोई भी कारण से भिन्न नहीं, तो एक कारण होगा सारे ब्रह्मांड का, उसके ज्ञान होने से सबका ज्ञान होगा, ये मंत्र हुआ प्रारंभ, एक ज्ञान से सबका ज्ञान, यदि भेद द्वैत सत्य मानेंगे एक ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो जाएगा, एक यदि उपादान कारण हो सबका उसके ज्ञान से सबका ज्ञान,